रविवार 17 मई के दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की तनातनी जारी। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाया निशाना।
नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने उसी सेक्रेटरी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना दिया।
बीबीसी हिंदी के 75 साल पर आज मुलाकात महान गायक हेमंत कुमार से।
दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, गीतों में जमाना खो जाए दिल।
ये सब थोड़ी देर में, सबसे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, फैसल मोहम्मद अली से। अफगानिस्तान के काबुल में विदेशी फौजी दस्ते पर हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। हमले में एक ब्रितानी फौजी ठेकेदार भी मारा गया, जबकि 20 लोग जख्मी हैं। यह आक्रमण काबुल हवाई अड्डे के उस प्रवेश द्वार की तरफ हुआ जिसका इस्तेमाल विदेशी फौजी दस्ते करते हैं। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। 3 दिनों पहले उन्होंने काबुल के एक होटल पर हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। इसमें 9 विदेशियों समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। आज के आत्मघाती हमले के बारे में अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने कहा,
एक वस्ते कुरला मवाद इंफजारी जो बजा शुदा बुद व हदफ शम।
विस्फोटकों को एक कैरोला में डालकर रखा गया था और उसका निशाना विदेशियों के उस इलाके में मौजूद वाहन थे। बदकिस्मती से 2 युवतियां जो आम शहरी थीं, की मौत भी इस हमले में हो गई। अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। खबरों के मुताबिक सीरिया की फौज पामीरा शहर के मध्य क्षेत्र से आईएस लड़ाकों को खदेड़ने में कामयाब रही है। आईएस लड़ाके शनिवार को शहर के उत्तरी हिस्से में घुसने में सफल रहे थे और इस बात का डर जताया जा रहा था कि अगर शहर चरमपंथी संगठन के हाथों में चला जाता है तो वो वहां मौजूद वैश्विक धरोहरों को बर्बाद कर देगा। इससे पहले संगठन ने कब्जे किए दूसरे इलाकों में इस तरह के कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यमन में जारी युद्ध विराम के 5 दिनों के खात्मे के बाद इसे और बढ़ाने की मांग की है। युद्ध विराम के मंगलवार से शुरू होने के बाद कई क्षेत्रों में मदद पहुंचाना मुमकिन हो पाया है। हालांकि युद्ध विराम मोटे तौर पर सफल रहा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हूती विद्रोहियों और सरकारी फौजों के बीच लड़ाई जारी रही। पिछली रात ताइज के उत्तरी इलाके में हुई लड़ाई में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इराक से आ रही खबरों के मुताबिक रमादी में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई लड़ाई में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है। एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक मारे जाने वालों में वो भी शामिल थे जो दोनों तरफ से चल रही गोलियों का जबरन शिकार हो गए। कुछ को आईएस लड़ाकों ने कत्ल कर दिया। मारे जाने वालों में बहुत से पुलिस के जवान भी थे जिनके पास गोलियां खत्म हो गई थी। आईएस लड़ाकों ने शनिवार को मुख्य प्रशासनिक भवन पर कब्जा कर लिया था। कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने ओटोमन साम्राज्य में रहने वाली 19वीं सदी की दोननों के संत होने का ऐलान किया है। दोनों फलस्तीन क्षेत्र में रहती थीं। मेरी अल्फोंसीन घट्टास और मरियम बवार्डी संत बताई जाने वाली अरब मूल की पहली नन है। यरूशलम से बीबीसी संवाददाता का कहना है कि दोनों औरतों को संत का दर्जा देकर चर्च ईसाइयत की जन्मस्थली में रहने वाले ईसाई समुदाय का समर्थन भी कर रहा है। इससे पहले वैटिकन ने फलस्तीन को एक मुल्क का दर्जा देने के लिए संधि भी की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर के पहले अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। bbchindi.com और मोबाइल पर भी। बीबीसी हिंदी के 75 साल पूरे हो गए हैं और आप सबको इस मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं। खास कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की कड़ी थोड़ी देर में पहले बात कर लेते हैं उस जंग की जो दिल्ली सचिवालय और राजभवन से निकलकर सड़क पर आती दिख रही है। मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शकुंतला गैम्बलिन की बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत होने की वजह से दिल्ली सरकार उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बना दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि केजरीवाल सरकार कार्यवाहक मुख्य सचिव का चरित्र हनन कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति का विवाद अब सड़क पर है। शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाए जाने से नाराज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में कहा कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को नाकाम करने की कोशिश में जुटी है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने उस अधिकारी को दिल्ली का मुख्य सचिव बना दिया जो बिजली कंपनियों की लॉबिंग में जुटी थी। उन्होंने कहा,
हमारे बिजली मंत्री के पास वो सेक्रेटरी आई, आके कहती है कि इस कागज पे साइन कर दो मंत्री जी। मंत्री जी ने पूछा क्या कागज है ये, उन्होंने कहा दिल्ली की बिजली कंपनियां बैंक से 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही हैं, उसके लिए ये कंफर्ट लेटर है। जब मंत्री जी ने चारों तरफ पता किया तो पता चला वो चिट्ठी कोई कंफर्ट लेटर नहीं है, वो चिट्ठी गारंटी है। ऐसी सचिव की हम लोगों ने खिलाफत करी, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने उसी सेक्रेटरी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना दिया।
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने शकुंतला गैमलिन को 10 दिन के लिए कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया है। केजरीवाल सरकार इस फैसले का विरोध कर रही है। केजरीवाल ने रैली में कहा कि वो कार्यवाहक मुख्य सचिव की हर फाइल पर नजर रखेंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केजरीवाल सरकार का विश्वास अराजकता फैलाने में है और वो वही कर रही है। शकुंतला गैमलिन के ट्रैक रिकॉर्ड की तारीफ करते हुए रिजिजू ने कहा कि उनके प्रति केजरीवाल सरकार के रवैये से पूर्वोत्तर के लोगों में नाराजगी है।
पूर्वोत्तर से एक लेडी ऑफिसर है शकुंतला गैमलिन, तो केजरीवाल और उसका सरकार के मंत्री लोगों ने जिस हिसाब से जो कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम किया है उससे हमारे वहाँ के सिविल सोसाइटी में और वहाँ के आम जनता लोगों में काफी दुखी है। ये सरकार जो है केजरीवाल का सरकार है वो काम काज पे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका ड्रामाबाजी में ही उसका रुचि है।
वहीं कांग्रेस को लगता है कि केंद्र और दिल्ली की सरकारें इस मुद्दे के जरिए राजनीति में जुटी हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन का कहना है,
एक तरफ जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है पावर कंपनीज के साथ मिले होने का, दूसरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट होने का सहारा लिया जा रहा है, तो ये पॉलिटिसाइज ना करें। और ये दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है दिल्ली सरकार उसको पॉलिटिसाइज कर रही है।
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच प्रशासनिक मुद्दे पर टकराव का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आम आदमी पार्टी की रैली में एक किसान की आत्महत्या के बाद दोनों सरकारें दिल्ली पुलिस को लेकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले नजर आई थी। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
और अब वक्त है उस खास पेशकश का जिसे आप BBC हिंदी के 75 साल पूरे होने पर बीते हफ्ते हर रोज सुनते रहे हैं। खास कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उस शख्स से जिसने भारत के सिनेमा में संगीत को एक बड़ी ऊंचाई दी। हिंदी और बांग्ला भाषा में हजारों गाने गा चुके हेमंत कुमार की पुरसुकून आवाज भारतीय संगीत के उस खजाने का हिस्सा है जिसे हम और आप सदाबहार गीतों के रूप में जानते हैं। अब से करीब 40 साल पहले यानी 70 के दशक में BBC के लंदन स्टूडियो में हेमंत कुमार आए थे और फुर्सत से BBC के साथ भारतीय सिनेमा के संगीत और अपने बारे में बात की। आइए सुनें ये बातचीत।
BBC के स्टूडियोज में आज हमारे मेहमान हैं भारत के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी, स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
नमस्कार
हेमंत जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि इस बार ब्रिटेन में आपके कार्यक्रम कैसे रहे?
इस बार कार्यक्रम अच्छा ही रहा, लेकिन कार्यक्रम के लिए मैं नहीं आया था एक्चुअली।
जी
हो गया, अपना राम जो दोस्त है राम अंजदारिया, उसने 5 प्रोग्राम का अरेंज कर लिया, तो मैं तो आया हूँ जून में, 16 जून, तो अभी कल ये खत्म हुआ।
उस दिन रॉयल एल्बर्ट हॉल में आपका कार्यक्रम देखने का मुझे भी मौका मिला।
अच्छा।
और बहुत से लोग जो थे वो आपके गीतों को सुनने आए थे।
हाँ जी।
लेकिन आप आरंभ में 10-15 मिनट आपने गीत गाए, उसके बाद हम इंतजार ही करते रह गए, आप दोबारा लौटे ही नहीं।
बात ये है कि बहुत आदमी, बहुत दोस्तों और सब लोग मेरे पास आए और मुझे ये शिकायत करने लगे, लेकिन एक्चुअली इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। क्यों? फिल्म स्टार्स का शो, फिल्म स्टार्स आए थे उनको देखने के लिए, तो मैंने देखा स्पेशली गर्ल्स लड़की लोग तो पागल, गेट क्रैश कर दिया, तो इसीलिए उन लोगों का प्रोग्राम इतना ज़्यादा हो गया और 10 बजे तो हॉल छोड़ना है।
अच्छा।
तो मुझे आके रिक्वेस्ट किया उनका लीडर कि प्लीज़ हेमंदा क्या करें। मैंने कहा ठीक है, नहीं गाने का मौका मिलेगा तो नहीं गाएंगे, लेकिन मैं इसलिए एंड में बोला कि मुझे गाने का मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे बहुत दुख है एंड आई थिंक विल फॉरगिव मी।
हेमंत जी, एक मुद्दत से हम आपके गाए हुए गीत सुनते आ रहे हैं। आज भी लोग उन गीतों को बड़े शौक से सुनते हैं। उनमें शास्त्रीय संगीत की वर्जिश ना भी हो, लेकिन एक लालित्य है, गंभीर है, सहजता है उन गीतों में। फिर भी आज संगीत के क्षेत्र में आप इतने अधिक गीत नहीं गा रहे या संगीत बद नहीं कर रहे, क्यों?
इसका दो वजह है, दो कारण है
जी।
एक तो है ये गीत, ये फिल्म जो बनती है ना, तो फिल्म बनने का जो पैटर्न अभी इतना बदल गया कि हमारा साथ वो ठीक, मतलब रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि बॉक्स ऑफिस करके एक टर्म है कि बॉक्स ऑफिस नहीं रहने से हमारा पीछे तो कोई नहीं भगेगा ना, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा उनको डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये जो पैटर्न के लिए मैं आस्ते आस्ते इधर से हट रहा हूँ। कोई कभी एक आध पिक्चर कभी बना लेता हूँ, लेकिन अपना इंटरेस्ट अभी नहीं है।
तो क्या आप यूं कहेंगे कि आज जो गीतों में शोर शराबा है या ग्लैमर है स्क्रीन पर, उसका जमाना है, प्रतिभा का महत्व कम रह गया है?
वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो जब इतने लोग पसंद करते हैं, कुछ तो है उसमें, होगा, आगे तो बढ़ ही रहा है ना। आप कहेंगे एडवांसमेंट, मैं कहूँगा एडवांसमेंट, कोई कहेगा ये एडवांसमेंट नहीं है, ये हमको पीछे ले जा रहा है, तो वो हम कुछ नहीं कहना चाहते।
क्या इस नई स्थिति के लिए पश्चिम का संगीत जिम्मेदार है?
हाँ, जरूर है, क्योंकि पश्चिम का जो पैटर्न ऑफ फिल्म मेकिंग, देखिए ना, मोस्ट ऑफ दी फिल्म्स वो तो फाइटिंग और कैबरे डांस और ये और वो फलाना ढमाका है। आप क्या ये सोच सकते हैं कि कोई कैबरे गर्ल का ड्रेस पहन के कोई ठुंगरी गाए? हो सकता है? और जो ड्रेसेस जो अभी लड़की लोग पहनती है, जो हीरोइन लोग पहनती है, उसमें कोई भजन गाए? नहीं होगा।
हेमंत जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि हम भी जब फिल्मों में देखते हैं, अपनी फिल्मों में,
हाँ जी,
एक ढर्रा सा बन गया है कि लड़की के पीछे लड़का भाग रहा है, लेकिन असली जिंदगी से ये चीजें कोसों दूर हैं। आपने कभी देखा सड़कों पर? तो इन चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? इसको कैसे बदलें? या
ये कैसे बदलेंगे? ये बदलने का ये एक ही हक था, एक ओनली गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब शुरू से ही लूज कर दिया कि तुम बनाओ, ऐसे ही पिक्चर बनाओ और लोग देखें, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो पैसा जो डालता है, वो तो पैसा वापस लाने के लिए डालता है ना, वो पैसा गंवाने के लिए तो नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे? जो चाहते हैं लोग, आम पब्लिक जो पिक्चर देखते हैं, ऐसे ही चाहते हैं, तो ऐसी पिक्चर बनती है।
हेमंत जी, आप संगीत जगत में, संगीत के क्षेत्र में कब आए?
मैं संगीत जगत में आया एक्चुअली 1938 से गाना शुरू किया, क्योंकि 1937 दिसंबर हमारा पहला रिकॉर्ड रिलीज हुआ, कोलंबिया, HMBA, सेम EMI। फिर गायक आस्ते आस्ते रेडियो, रिकॉर्ड और जितने भी क्षेत्र है उसमें कुछ हुआ। फिर फिल्म में आए, फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर बने। फिर 1951 में बॉम्बे में आया
जी।
मैं कलकत्ता में ही था, बंगला गाना ही गाता था, तो 1951 से बॉम्बे में हूँ। बॉम्बे का कोई पिक्चर बनाया।
क्या ये सही है कि आपका एक गैर फिल्मी गीत था, कितना दुख दिलाया प्यारी, बहुत मकबूल हुआ, और यहीं से क्या आपको लोकप्रियता ज्यादा मिली? यहीं से एक गायक के रूप में,
हिंदी
क्षेत्र में
पहला रिकॉर्ड है हमारा,
पहला रिकॉर्ड है। और संगीतकार के रूप में आपकी आनंद मठ फिल्म थी,
आनंद मठ पहला फिल्म हिंदी, उसके बाद शर्त जो नए चांद होगा ना
तारे रहेंगे,
नए चांद होगा तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, नए चांद होगा।
उसके बाद सम्राट, फिर नागिन।
नागिन की आपने बात की, नागिन की बीन के पीछे क्या राज था?
अभी स्टोरी ऐसा था कि बीन चाहिए, सपेरे के बीन, अभी सपेरा बुलाया, वो बीन वाले सब जितने बुलाए, देखा तो सुर में नहीं बजा सकता, और सुर में भी बजा सकता तो वो ऑर्केस्ट्रा के साथ कैसे मैच होगा
जी।
इसलिए उन दिनों में पहले मैं सोलो बॉक्स यूज किया आनंद मठ में, सोलो बॉक्स बड़ा अच्छा लगा मुझे, उसका टोन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सुना कि कल्याण जी, आनंद जी, एक्चुअली ही वॉज अ हारमोनियम प्लेयर, उसने कोई नागपंचमी पिक्चर में एक कुछ ऐसा बजाया, अच्छा। तो मैंने देखा नागपंचमी पिक्चर, तो वो क्लेवियोलाइन करके एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें बजाया, लेकिन उसमें एक गलती क्या थी, मतलब डिफेक्ट क्या, विंड इंस्ट्रूमेंट, सपेरा का बीन जो होता है ना, विंड है, ब्लोइंग, और वो एक के बाद दूसरा नोट में एक गैप होता है, तो वो गैप मैंने भरा हारमोनियम से, हारमोनियम और क्लेविलाइन ऐसा मिक्स किया, वो पता नहीं चलता है हारमोनियम है।
इसलिए उसके लिए बहुत कहानियां थी कि लोग कहते थे सचमुच बीन है या कि नहीं।
इसीलिए कहानी भी है, कल्याण जी मुझे बताया, कल्याण जी कोई गांव में गया बजाने के लिए,
अच्छा
तो उसने वो क्लेविलाइन बजा रहा था बीन, तो लोग हंगामा शुरू किया, अरे सपेरा का बीन किधर है।
अच्छा
तो बहुत मुश्किल से उसको समझाया कि यही बजाया गया है।
हेमंत जी, खुद ही संगीतकार और गायक होते समय आपको कुछ कठिनाइयां पेश नहीं आती?
कठिनाइयां तो पेश शुरू शुरू में हुआ था।
कैसे, किस तरह की?
किस तरह की मतलब, एक 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 स्टेप जाने के लिए मेहनत करना, फिर धक्का खाना इधर से उधर, उधर से इधर, कोई बोलता है अच्छा नहीं है, कोई बोलता है अच्छा है, कोई थोड़ा सा मिला चांस तो कुछ आगे बढ़ा, ऐसे करते करते सबको ठोकर खाना ही पड़ता।
नहीं, एक ही वक्त में गीत गाना भी और संगीत भी देना, इसमें कोई कठिनाई कभी आती है?
नहीं नहीं,
इसमें नहीं आती।
नहीं, कुछ नहीं।
अच्छा, क्या संगीतकार बनकर दूसरे संगीतकारों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा रही, होड़ रही, इससे क्या गायन के क्षेत्र में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ कि अगर एक ही लाइन में रहते तो क्या ज्यादा सफलता नहीं मिलती?
शायद होता, लेकिन हमारा मतलब ऐसा ही था कि मैं सब कुछ करूं, मतलब कोशिश करूं। जैसे कि मैंने गायक से म्यूजिक डायरेक्टर बना, म्यूजिक डायरेक्टर से फिल्म प्रोड्यूसर बना, फिल्म प्रोड्यूसर से फिल्म डायरेक्टर भी बना। आई हैव डायरेक्टेड फिल्म, बंगला अच्छा, फिल्म मैंने डायरेक्ट अच्छा, किया है एक बंगला पिक्चर, क्योंकि मेरा वो था कि देखें तो क्या है, ये यही है।
यानी बहुत सी चीजें आपने एक वक्त में करने की कोशिश की, कामयाबी भी मिली
एक एक बार, मतलब इच्छा होता है। जैसा कि अभी एडिटिंग सीखने का भी शौक था,
अच्छा,
लेकिन अभी तो मैं ऑलमोस्ट प्रोडक्शन छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, अभी तो फुल कंसंट्रेशन गाना में ही किया है।
हेमंत जी, नए कलाकारों की कुछ बात करूंगा। मेरी बात जब भारत के कुछ गायकों से, मोहम्मद रफी साहब से, आशा भोसले, मन्ना डे, ये सवाल उठा हर बार। उन लोगों का ये भी कहना था कि संगीतकार पर या प्रोड्यूसर पर फिल्म के बहुत कुछ निर्भर करता है। आप एक ही वक्त में संगीतकार भी रहे और आपने फिल्में भी बनाई, तो नए लोगों को, नए कलाकारों को आगे लाने में क्या आपने कोई योगदान दिया?
मैंने किया है कुछ, कोशिश किया।
कैसे?
एकाध आर्टिस्ट को तो मैं चांस दिया गाने के लिए, और बंगाल में तो अपना कलकत्ता जो अभी मैं ज़्यादा काम करता हूँ जहाँ, उधर तो मैं बहुत नए नए आर्टिस्ट को चांस देता हूँ।
लेकिन ऐसी क्या बात है कि हमारा इतना बड़ा देश,
लेकिन बंगला और हिंदी में फर्क मैं बताता हूँ
जी।
अभी ये हिंदी फिल्म, इसका जो कॉस्ट अभी हुआ है वो फैंटास्टिक, और उसकी इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर है, वो पैसा देता है फिल्म बनाने के लिए। प्रोड्यूसर का थोड़ा पैसा डालना पड़ता है पहले, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा देते हैं, फाइनेंस कोई करता है, तो सभी लोग डिक्टेट करते हैं कि इसको लेना ही पड़ेगा
जी।
कोई भी गाना हो, किशोर कुमार को लो, नहीं तो आशा को लो, नहीं तो दादा को चाहिए
जी, हाँ,
तो मोहम्मद रफी को लो, यही वजह है और कुछ नहीं।
हेमंत जी, क्या आप समझते हैं कि हिंदी फिल्मों में गाना ही पैमाना रह गया है सफलता का हमारे देश में?
मतलब नहीं,
मतलब ये कि जब तक कलाकार हिंदी फिल्मों में नहीं कामयाब होता, हाँ, तो देश में लगता है कि उसको सफलता नहीं मिली।
वो तो है लेकिन फिल्म इतना बड़ा मीडियम हो गया अभी, इतना इजी अप्रोच टू द पीपल, कि लोग इतने फिल्म देखते हैं, एवरी डे बढ़ रहा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है अपना इंडिया, हाँ, में तेमनी फिल्म गोअर्स भी बढ़ रहा है।
नहीं, लेकिन इतनी 62 करोड़ का देश, हाँ, उसमें वही 10-15 गायक ही पिछले 30-35 साल से गा रहे हैं, कुछ अजीब नहीं लगता कि ऐसा क्या कारण
तो
है कि लोग नहीं आ पा रहे?
एकाद आर्टिस्ट तो आ तो भी रहे हैं,
इतना काफी तो नहीं ना?
काफी नहीं।
तो क्या इसका क्या हाल है?
इसका कारण ये है कि आज सुबह ट्यून बना के शाम को अगर रिकॉर्डिंग करें तो नया आर्टिस्ट को कैसे चांस मिल सकता है?
लेकिन कब तक चलेगा ये?
यही चलता है ना, एक एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास 32-30-60 पिक्चर, उसको डे नाइट काम करना पड़ता है, उस सुबह ट्यून बनाता है, शाम को रिकॉर्ड करता है, तो नए आर्टिस्ट कैसे लेगा वो?
लेकिन कब तक चलेगा? 40-50 साल, उनका जब जमाना जाएगा या वो दुनिया से जब जाएंगे तो नए कलाकार
ऐसे ही चलेगा, जब ये क्रैशिंग पॉइंट में आएंगे, जैसा मल्टी स्टार शुरू हुआ आजकल, देखिए मल्टी स्टार।
जी हाँ,
पहले एक पिक्चर बनाना 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख विथ राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, अभी वो ये हो गया 2 करोड़ 2 करोड़
जी
मल्टी स्टार्स। ये मल्टी स्टार्स जब 10-12 मल्टी स्टार्स फेल हो जाएंगे तो क्रैशिंग पॉइंट हो गया ना, क्रैश हो गया
जी,
फिर वो शुरू से शुरू होगा। फिर भाई ये नहीं चलेगा, पैसा वैसा अभी नहीं है, फिल्म लाइन में कुछ नहीं है तो फिर छोटा मोटा पिक्चर से शुरू करो, नए नए आर्टिस्ट लो, नए नए ये लो, ये करेंगे।
हेमंत जी, शास्त्रीय संगीत जो भारत का है, जो कहा जाता है सच्चा संगीत है, फिल्मी संगीत ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। दिन रात रेडियो पर गीत बजते हैं, आप समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत को कुछ ज्यादा स्थान मिलना चाहिए?
मिलना तो चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए ना।
कैसे
कैसे? मतलब जैसे तानसेन भी बना है, बैजू बावरा, ऐसी पिक्चर भी बनी है ना, तो शास्त्रीय संगीत के ऊपर अगर पिक्चर बनाए, वैसा गाना देना चाहें, तो कैरेक्टर्स भी वैसा होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे शास्त्रीय संगीत दे सकते हैं? ये तो सभी आजकल इंडियन ड्रेस देखते हैं आप इंडियन फिल्म में,
जी हाँ,
सूट पैंट गाउन ये और वो, उसमें शास्त्रीय संगीत कैसे लगेगा आपको? हो नहीं सकता।
क्या शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीत इसका हल है?
फिल्मी गीत, फिल्म पैटर्न जो है वो एक फिल्मी गीत एक अलग पैटर्न ही है, ये फिल्मी गीत
जी।
अब वैसा पहले जैसा बोल है, लिरिक्स, पोएट, पोएट्री मिलता है आपको? नहीं
जी, नहीं। हेमंत जी, क्या ये महज इत्तेफाक है कि आपने रहस्य प्रधान फिल्मों में काफी संगीत दिया, कोहरा, 20 साल बाद, या आपका कोई खास शौक था कि ऐसी फिल्मों में दिया जाए संगीत?
हाँ, मैं खुद बनाया ना।
हाँ, वो आपकी फिल्म थी जी। हाँ, ऐसी फिल्में बनाने के पीछे आपका लक्ष्य या आपका कैसे ख्याल आया कि ऐसी फिल्में बना, और काफी कामयाब फिल्में थी?
हाँ, ख्याल इसलिए आया कि जब देखा मैंने कि जिसको मैंने आपको पहले कहा, बॉक्स ऑफिस नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर कोई पूछता नहीं, कोई इतना वैल्यू नहीं है, तो मैंने सोचा कि खुद पिक्चर बना के देखें तो क्या होता है
जी।
चांस लिया था एक्चुअली, एक चैलेंज इसको कहता है करके, वो 20 साल बाद बनाया।
चुनौती थी और उसमें आपको कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद राहगीर भी शायद आपने बनाई थी।
हाँ, राहगीर बना, राहगीर कामयाब नहीं हुई।
नहीं हुई। तो 20 साल बाद से आपको प्रेरणा मिली कि
वही 20 साल बाद से ही मैं फंस गया एक्चुअली। प्रेरणा क्या, प्रोड्यूसर एज ए प्रोड्यूसर फंस गया ना।
अच्छा,
फिर कोहरा वो भी नहीं चली, फिर बीवी और मकान ऋषिकेश मुखर्जी
जी, हाँ,
नहीं चली, कोई नहीं चला, फिर राहगीर जैसा पिक्चर नहीं चली, वो भी अच्छा पिक्चर है।
राहगीर फिल्म मैंने देखी थी और मुझे पसंद आई थी।
आपको पसंद आया, लेकिन सब लोगों को पसंद नहीं, ज्यादा लोगों को पसंद
नहीं है। हेमंत जी, संगीतकार के रूप में आप धुनें बनाते हैं, एक गीत में आवाज, धुन और शब्द, किसको ज्यादा महत्व देंगे आप?
शब्द,
शब्द
पहले, शब्द,
लेकिन
हर गाना नहीं, लेकिन ज्यादा गाने में ऐसे ही होता है कि सिचुएशन एक होती है ना
जी। हाँ,
कोई भी सिचुएशन में उसके मुताबिक गाना बनाना पड़ता है, तो शब्द पहले आना चाहिए। आजकल क्या होता है ज्यादा,
आज शब्द तो रह ही नहीं गए,
बाद में, पहले ये लोग सब सुनते हैं वेस्टर्न म्यूजिक, ज्यादा सुन के जो पसंद होता है वो टुकड़ा लेके उसके ऊपर धुन बना के फिर पोएट को बोलते हैं इसके ऊपर गाना लिखो।
इन हालात में हेमंत जी, आप सोचते हैं कि आप इस क्षेत्र में फिर लौटना चाहेंगे?
नहीं, नहीं, मैं नहीं, से? नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं।
आप नहीं चाहेंगे?
नहीं, मैं अच्छा हूँ, शांति है, क्योंकि मैं इनके साथ मिलके वैसा पिक्चर नहीं बना पाऊंगा, अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं होगा।
हेमंत जी, आज तक आपने जितने भी गीत गाए या धुने बनाई, ये तो कहना मुश्किल है, कितने को गीत फिल्मों में आपने?
फिल्मों में कम से कम 500 तो होगा, 500
के करीब।
टोटल लेके बंगला और हिंदी और सब भाषा लेके अबाउट 3000 गाना मैंने गाया।
अच्छा, बंगला लोक धुनों पर क्या आपने भी हिंदी में कभी किया? क्योंकि बर्मन दा के काफी गाने ऐसे हमने,
नहीं, मैंने नहीं किया।
उसकी क्या वजह है?
वजह ये है कि मैंने सोचा कि बंगला उसको लेके हिंदी ये ठीक नहीं है।
अच्छा।
हिंदी एक भाषा एक है जो इसके मुताबिक बनाना चाहिए, लेकिन बर्मन दा वजह जीनियस पर्सन, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो ऐसा तोड़ते थे अपना लेके, बंगला लिया लेकिन जब हिंदी में ट्रांसफर करते थे वो पता ही नहीं चलता कहाँ से लिया, कैसे लिया, कैसे।
हेमंत, अगले सवाल से पहले मैं वापस लौटूंगा कि आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या शौक था इस क्षेत्र में आने का या महज इत्तफाक था?
शौक था। इस लाइन में आएंगे कि कभी सोचा नहीं था।
अच्छा,
सपने में भी सोचा नहीं था उस जमाने की बात आप सोचिए, उस जमाने में अगर हम गाना गाए तो अपना जो पिता माता कोई भी खुश नहीं रहते, बोलते नहीं नहीं ये बंद करो, गुस्से करते बहुत।
गाना, फिल्म और रेडियो, इन चीजों को काफी
दूर था अपना, सोसाइटी से बहुत दूर था। अब तो उल्टा हो गया
जी। हाँ,
अब तो अपना माँ बाप बेटा और बेटी को लेके घर घर में इधर उधर घूमते फिरते हैं कि हमारा बेटी का आवाज अच्छा है और बेटा भी अच्छा गाता
तो
है।
उस जमाने के किस कलाकार ने, गायक ने आपको मुतासिर किया बहुत?
पंकज मल्लिक, एस डी बर्मन, के सी दे, ये सब संगीतकार जो थे ना। फिर उसके बाद हम लोग सुना बॉम्बे का खुर्शीद, फिर नूरजहान,
पाकिस्तान चले गए,
अभी तो पाकिस्तान,
हाँ।
उस जमाने में नौशाद साहब ने आए, गुलाम हैदर, फिर सी रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर।
हेमंत दा, आपके अपने इतने गीतों में से अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप क्या समझते हैं सबसे अच्छा गीत कौन सा है, ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर इसे ऐसे मैं कहूँ कि आप अपनी तन्हाई में अचानक कोई अपना गीत गुनगुना देते हो बरबस अक्सर, ऐसा कोई गीत आता है याद आपको?
एक आध है वैसा, जैसा जाने वो कैसे, दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा,
दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, ये गीत थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए गुनगुना सकेंगे?
गुनगुना सकेंगे, नाक बंद हो गया।
इससे ज्यादा अच्छा आएगा, आप देखिए।
नहीं अच्छा आएगा,
थोड़ा सा गुनगुना दीजिए क्योंकि सांस के साथ तो बहुत लोग सुनते हैं, इसका एक अपना लुत्फ है।
दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, गीतों में जमाना खो जाए दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, गीतों में जमाना खो जाए दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, ले आओ मेरी दुनिया के लिए, ले आओ मेरी दुनिया के लिए, खुशियों का तराना हो जाए दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा।
हेमंत, बहुत ही अच्छा गीत है ये तो। ऐसा गीत जो कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया या आपके दिल में वो रह गई कि धुन बन जाती और ये गीत बन जाता, ऐसा कुछ है कोई गीत जो आ नहीं पाया सामने लेकिन
सामने
अच्छा
आ नहीं पाया? वैसा तो बहुत गीत है,
कोई ऐसा आपके जहन में आता
जैसा
हो?
मैं एक गाना बनाया था दुर्गेश नंदिनी फिल्म में जो लता ने गाई थी, कहां ले चले हो
बता दो मुसाफिर,
लेकिन बहुत पसंद है मुझे।
लेकिन वो तो लोकप्रिय हुआ भी,
लोकप्रिय जितना होना चाहिए था इतना नहीं हुआ।
अच्छा, उसके अलावा कोई ऐसा गीत जो धुन आप चाहते हो कि होती लोकप्रिय लेकिन हो नहीं पाई, कोई ख्याल आता है या नहीं?
जल्दी याद करना बहुत मुश्किल होता है।
अच्छा हेमंत दा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप संगीतकार के रूप में या एक गायक, गायिका और शायर, चार पांच गीत चुनिए, तो आप किन कलाकारों के गीत चुनना पसंद करेंगे, सुनवाना?
ये बहुत मुश्किल है, ये भी सोचना पड़ेगा।
हाँ, सोचना तो पड़ेगा, लेकिन आपके जहन में जो अचानक आएंगे, हाँ, वही सच्ची आपकी चॉइस होगी। ये बात भी देखिए, हाँ, आप किस संगीतकार का गीत बजाना पसंद करेंगे? इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं,
मैं पसंद करूंगा एसडी बर्मन।
एसडी बर्मन। अच्छा हेमंदा, और आपका अपना गीत, अगर आपको कहें एक गीत रिकॉर्ड चुनिए, कौन सा गीत हम सुनवाएं अपने श्रोताओं को?
तेरी दुनिया में जीने से
तो बेहतर है कि मर जाएं।
तो बेहतर है कि मर जाए।
अच्छा हेमंता, हम ये गीत सुनवाएंगे और स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए, वही आंसू वही आहें।
हेमंत कुमार के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार।
अफगानिस्तान के काबुल में विदेशी फौजी दस्ते पर हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक सीरिया की फौज पामीर शहर के मध्य क्षेत्र से आईएस लड़ाकों को खदेड़ने में कामयाब रही है। संयुक्त राष्ट्र के यमन में जारी युद्ध विराम के 5 दिनों के खात्मे के बाद इसे और बढ़ाने की मांग संयुक्त राष्ट्र ने की है। युद्ध विराम के मंगलवार से शुरू होने के बाद कई क्षेत्रों में मदद पहुंचाना मुमकिन हो गया है। हालांकि लड़ाई जारी है और ताज के उत्तरी इलाके में हुई लड़ाई में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। इराक से आ रही खबरों के मुताबिक रमादी में पिछले 2 दिनों के दौरान हुई लड़ाई में कम से कम 500 लोगों की मौत हो गई है। आईएस लड़ाकों ने शनिवार को मुख्य प्रशासनिक भवन पर कब्जा कर लिया था। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। दिन भर के पहले अंक में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।